का था, रूप वही रूप नया।
दो हजार का नोट के पिछले भाग में आपने सुना कि चौकीदार रामकृपाल के जरिए रफीक लंबू और गजानन तक सोने का एक बिस्किट तो पहुंच ही गया। और जैसा कि रामकृपाल ने मोटी औरत और बच्चे का हुलिया बताया, रफीक और गजानन सकते में आ गए कि ये नए दो चरित्र कौन से हैं। आखिरकार क्या सोने के सारे बिस्किट रफीक लंबू तक पहुंच सके और डील सक्सेसफुल हुई या नहीं, जानने के लिए सुनिए 2000 का नोट का ये भाग। बार बार पूछने पर भी रामकृपाल इससे ज्यादा कुछ बता नहीं पाया कि वो औरत पेटी लेकर आसमानी रंग की मारुति वैन में भागी थी। रफीक लंबू रामकृपाल के पास आया और बोला,
तूने जो भी किया वो अनजाने में किया, ऐसा करके अपन तेरे को जिंदा छोड़ रहा है। लेकिन अगर मेरे को बाद में पता चला कि तू अपन के साथ कोई चिल्लाकी केला है तो खुदा कसम अपन तेरे पूरे खानदान को काट डालेगा, समझा क्या?
रामकृपाल भय और दर्द की अधिकता से सिर्फ गूंगूं ही कर सका। रफीक ने अपने गुर्गे को उसके साथ भेज दिया कि उसके घर पर पड़े बाकी चार बिस्किट उठा लाए। बाद में रफीक और गजानन सिर जोड़े समस्या का तोड़ ढूंढने लगे। आखिर वो औरत कौन हो सकती है? क्या वो अचानक सुबह वहां पहुंच गई थी और इत्तेफाक से उसे सोने की पेटी मिल गई थी, या वो पहले से ही घात लगाए हुए थी? अचानक गजानन बोला,
रफीक मुझे लगता है जहां मोहन और गैब्रियल की मीटिंग हुई थी ना, उधर से सुराग मिल सकता है। रहमान जिंदा होता तो जरूर कुछ पता चलता कि उसने किधर से नोट का पता निकाला था।
रफीक बोला, अपने सब आदमी लोग को जमा करो और उनसे इस बाबत पूछताछ करो कि रहमान किधर से नोट के बाबत जानकारी निकाला था। कोई कुछ भी बताए तो मेरे को भी बताने का, समझा? इनामदार ने सहमति में सिर हिलाया और इस बाबत विस्तृत पूछताछ शुरू की। बातचीत में जिस संभ्रांत अपराधी ने ट्रेन में श्यामराव की ठुकाई की थी उसका पता चला तो उसे रफीक के सामने पेश होने का हुक्म मिला।
तो तूने श्यामराव नाम के भीड़ू को ट्रेन में धोया था?
रफीक ने पूछा।
हाँ बड़ा बाप, मेरे को रहमान भाई की तरफ से ऑर्डर था।
वजह?
वो तो अपुन नहीं जानता बड़ा बाप, मेरे को हुक्म मिला था कि उसको जान से खलास नहीं करने का है, बस थोड़ा बहुत ठोक के उसका खीसा खाली करने का है। तो अपुन ने उसके पास से 16,000 कैश, उसकी घड़ी और चांदी का चेन छीन लिया था बस।
रफीक ने उसे जाने का इशारा किया, फिर इनामदार से बोला,
श्याम राव को पकड़ गजानन, श्याम राव को पकड़, वो जरूर कुछ जानता होगा। रहमान बिना मतलब इतना टूचा काम नहीं करेगा कि किसी का 16,000 रुपया छीनता फिरे।
एक बार फिर पप्पू बेवड़े को फोन खड़काया गया।
पप्पू, मैं रफीक बोलता है।
कौन रफीक?
अबे रफीक लंबू।
सामने लाइन पर सन्नाटा छा गया। बेवड़े को विश्वास ही नहीं हुआ कि रफीक लंबू खुद उसे फोन कर सकता था।
पप्पू सुन रहा है कि नहीं?
रफीक ने झुंझला कर कहा। हाँ 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 भाई भाई सुन रहा है, हुकुम करो, पप्पू हकलाता हुआ बोला।
श्याम राव को जानता है ना?
हाँ हाँ भाई जानता है, मैं ही उसको रहमान भाई से मिलवाया था।
सुन, आप उनके काम में एक फच्चर पड़ गए लाए और मेरे को श्याम राव से मिलना मांगता है, तू उसको मेरे पास लेके आ सकता है?
जवाब में पप्पू ने श्याम राव के साथ रहमान द्वारा की गई कारिस्तानी की पूरी रिपोर्ट रफीक को सुना दी।
इसकी माँ का?
रफीक के मुंह से गंदी सी गाली निकली।
ये रहमान साला चिंदी चोरी बहुत करता है, किसी गरीब को सताकर क्या मिला उसको बता, कुत्ते जैसा मारा गया।
सुन, मैं श्याम राव के नुकसान की भरपाई करेंगा और खुद उसके घर जाके करेंगा, तू कल मेरे को लेके चल उसके पास।
पप्पू बेवड़ा और रफीक लंबू का पथ प्रदर्शक?
ना खुदा, पप्पू का कलेजा चौड़ा हो गया। ओके भाई, कल लाता है अपुन, सलाम भाई।
तुरंत पप्पू श्याम राव से मिलने उसके स्टैंड पर पहुंचा। पप्पू को देखते ही श्याम राव ने अपना सूजा मुंह और सुजा लिया।
अरे श्याम भाई, क्या हुआ थोबड़े को?
श्यामराव ने उसे ट्रेन में मारा मारी और अपने लुटने की कहानी सुना दी। पप्पू तो सब कुछ जानता था कि ये रहमान का करिश्मा था, लेकिन ऊपर से वो बोला, अरे भाई तुम्हारा किस्मत ही खराब था, लेकिन सुनो अब तुम्हारी बहुत बड़ी लाटरी लग गई है। श्यामराव तुरंत कान पकड़कर बोला, पप्पू भाई आप उनको माफ करना, आप उनको लाटरी वाटरी नहीं लगवाने का है, आप कोई मगजमारी मेरे को चाहिए नहीं, मेरे को नहीं पढ़ना इस सब में, किस्मत में नहीं रहेगा पैसा तो आके भी चला जाएगा। जवाब में पप्पू ने श्यामराव को समझाया कि बड़े बाप रफीक लंबू को उसके साथ हुए हादसे का पता चला है और वो खुद उसके घर आकर उसकी भरपाई करना चाहता है, अब इतने बड़े भाई की कृपा को ठुकराना तो मुनासिब बात नहीं होगी। पप्पू ने श्यामराव को ऐसा शीशे में उतारा कि रफीक को अपने घर आने की जहमत देने की बजाय श्यामराव खुद पप्पू के साथ रफीक से मिलने जाने को तैयार हो गया। वैसे भी अपने झोपड़े में वो इतने बड़े मेहमान को बैठा था कहां। सुबह श्यामराव को लेकर पप्पू बेवड़ा रफीक के ऑफिस में जा पहुंचा। अपनी फुल बांह की शर्ट, ढीला पाजामा, कोल्हापुरी चप्पल और गांधी टोपी के दम पर श्यामराव मराठा को कोई अंधा भी पहचान सकता था। रफीक लंबू ने नकली क्रोध दिखाते हुए पप्पू से कहा, मैंने बोला था ना कि मुझे इनके घर लेके चलना। पप्पू बोला, भाई आप काहे को तकलीफ करोगे, देखो श्यामराव हाजिर है। रफीक ने जाकर श्यामराव को गले लगाया और बोला, श्यामराव मेरे आदमी रहमान ने तुम्हारे साथ बहुत जाति केला है, अपुन उसके लिए माफी मांगता है। इतना कहकर रफीक ने इनामदार की तरफ देखा। इनामदार ने सहमति में सिर हिलाया और श्यामराव के पास आकर उसे एक पैकेट दे दिया। रफीक बोला, खोलो श्यामराव। श्यामराव ने खोला तो पैकेट नोटों से ठुसा हुआ था। रफीक बोला, ये तुम्हारा 16,000 रुपया है जो रहमान के बीड़ो लोग तुमसे ट्रेन में छीना। श्यामराव की आंखें चौड़ी हो गईं। वो रहमान के आदमी थे? अरे मादसा विट्ठला, उसको उसके किए की सजा मिल गई, समझा। इतना कहकर रफीक ने एक और बड़ा पैकेट श्यामराव को दिया। श्यामराव ने प्रश्नवाचक दृष्टि उठाई तो रफीक बोला, ये 1,00,000 रुपया है श्यामराव, तुम्हारी तकलीफ का हट जाना, अब तुम जा सकता है, भूल चूक की माफी हाँ मेरे को। श्यामराव की आंखें भर आईं, वो हाथ जोड़कर बोला, रफीक दादा तुम इंसान नहीं भगवान है, मेरे को कोई भी काम बोलो अपुन करेगा। रफीक बोला, बाव जबरदस्ती नहीं है, लेकिन अगर तुम बताना चाहे तो जो कुछ तुम रहमान को बताया वो अपने को बताएंगा तो बहुत मेहरबानी होएगा तुम्हारा। जवाब में श्यामराव ने पूरी कथा रफीक और गजानन को सुनाई। सब कुछ समझकर उन्होंने दोनों को विदा कर दिया और एक दूसरे को देखने लगे। मार्था, उसके अलावा कोई हो ही नहीं सकता। गजानन बोला, हाँ उसी के पास नीली मारुति वैन है और उसी के पास हमारा माल है। अपन आज रात को चलते हैं। रफीक बोला। रात के लगभग 11 बजे थे। मार्था के अड्डे पर इक्के दुक्के शराबी बैठे जाम चुसक रहे थे। मार्था जल्दी ही अड्डा बंद करने की सोच रही थी, अचानक एक गाड़ी सामने आकर रुकी और उनमें से फटाफट 4 बाउंसर्स उतर आए। उन्होंने झोल झाल शराबियों को कॉलर पकड़कर बाहर धकेल दिया। फिर एक आलिशान रेंज रोवर आकर खड़ी हुई और उसमें से रफीक और गजानन उतरकर मार्था के पास चले आए। मार्था जरायम की दुनिया की खिलाड़ी थी, वो समझ गई कि पंगा पड़ गया है। वो दोनों बड़े दादाओं को पहचानती तो नहीं थी, लेकिन ये आगमन सोने के लिए ही हुआ है ये आभास उसे हो गया था। उसने पिंजरे में कैद बाघिन की तरह तड़प कर इधर उधर नजरें दौड़ाई तो कोई नजर नहीं आया। पता नहीं सैम भी कहां मर गया था। बोलो मैन, दादागिरी काय को दिखाता है, वो ऊपर से दिलेरी दिखाती हुई बोली। अपने काउंटर पर वो पीछे के एक स्टूल पर ऐसे बैठी हुई थी जैसे सर्कस में विशाल हाथी स्टूल पर बैठते हैं। अभी आज का अड्डा बंद हो गया है, तुम लोग अभी कल आने का। रफीक के मुंह पर जहरीली मुस्कुराहट आ गई कि मोटी अच्छा अभिनय कर रही है। गजानन ने भी हाथ में पिस्तौल निकाल ली, लेकिन रफीक ने हाथ उठाकर उसे मना कर दिया। उसे आग उगलने वाले खिलौने सख्त नापसंद थे। चाकू ब्लेड जैसे हथियार अच्छे लगते थे जो शोर नहीं मचाते थे लेकिन दहशत खूब तारी कर देते थे। उसे पता था कि मार्था जैसी टफ औरत ब्लेड और उस्त्रे जैसे पिद्दी औजारों से डरने वाली नहीं थी। तो उसने अपने एक पिट्ठू को इशारा किया जो चटपट जाकर गाड़ी से एक चमचमाती तलवार निकाल लाया। रफीक हाथ में तलवार लेकर हिंसक दृष्टि से मार्था को घूरने लगा। अफून का सोना किधर है मोटी? बता देगी तो आसान मौत मरेंगी। मार्था अच्छी तरह समझ गई थी कि अब उसकी जान नहीं बच सकती, लेकिन वो खिलाड़ी औरत थी। उसने इसी तरह की आशंका के चलते एक शराबी से दो दिन पहले एक देशी कट्टा खरीदा था, जिसके बारे में बेचने वाले का दावा था कि एक बार में तो हाथी भी गिरा सकता है। वो लोडेड कट्टा मार्था ने अपने सामने की दराज में ऐसे ही किसी स्थिति को संभालने के लिए रखा था। मार्था ने नजरें रफीक पर जमाए रखी, लेकिन नीचे काउंटर की दराज में हाथ डालकर कट्टा टटोलने लगी। रफीक तलवार लेकर दृढ़ कदमों से मार्था की तरफ बढ़ा। अचानक भरा हुआ कट्टा मार्था के हाथ लग गया, और इसके पहले कि रफीक के तलवार की नोक उसे स्पर्श कर पाती, उसने बौखलाकर कट्टा सामने ताना और आंख मूंद कर गोली चला दी। एक जोरदार धमाका हुआ। 4000 में खरीदे हुए टुच्चे लोहे से बने कट्टे की नाल फटकर दो टुकड़े हो गई, लेकिन शहीद होने से पहले उसने अपना फर्ज बखूबी निभा दिया। रफीक की छाती में काफी बड़ा छेद नजर आने लगा, जिसमें से छूटी खून की तेज धार ने हर चीज को भिगो दिया। रफीक लंबू की आंखों में दुनिया भर का आश्चर्य उभर आया, और वो कटे पेड़ की तरह धड़ाम से मुंह के बल गिरा। उसके हाथ की तलवार बगल में ही गिर पड़ी। सेकेंड के 100वें हिस्से में गजानन के हाथ की पिस्तौल भी आग उगल चुकी थी, जिसने मार्था के विशाल बदन में अनेक झरोखे बना दिए। सैम बहुत देर से अलमारी के बगल में छुपा ये सब देख रहा था। मार्था के मरते ही उस पर मानो कोई शैतान सवार हो गया। वो बुरी तरह चीखता हुआ बाहर निकला, और उसने तलवार उठाकर भरपूर वार गजानन की गर्दन पर किया। तब तक गजानन भी मुड़कर फायर कर चुका था। दोनों का तीर निशाने पर बैठा। गजानन इनामदार नामक बड़े भाई की आधी गर्दन कटकर झूल गई, जिससे उसका सिर कंधों पर लटक गया। उधर सैम की नाक पर गोली लगी और उसकी जीवन ज्योति बुझ गई। बाउंसर्स कुछ समझ पाते तब तक ये सब घटित हो गया। अचानक वातावरण में पुलिस सायरन गूंजने लगा। चारों गुर्गे हड़बड़ाते हुए वहां से भाग खड़े हुए। पीछे चार लाशें और रफी की आलिशान रेंज रोवर रह गई थी। सोना भी अपनी जगह ही पड़ा रह गया। बाद में जब पुलिस को पता चला कि मुंबई के दो इतने बड़े दादा एक साथ मारे गए हैं, तो वहां खलबली मच गई। बाद में तलाशी में सोना बरामद हो गया। इस केस में सबका नुकसान ही नुकसान हुआ था, सिवाय श्याम राव के। वो अपनी पत्नी के साथ कोल्हापुर की तीर्थ यात्रा पर चला गया, और उसने विट्ठल के चरणों में 2000 का एक नया नकोर नोट चढ़ाकर उसकी कृपा के लिए धन्यवाद देते हुए प्रार्थना की। आप सुन रहे थे कहानी 2000 का नोट, जिसके लेखक हैं महेश दुबे। आप तक इस कहानी को गाथा के जरिए पहुंचाया नयनी दीक्षित ने।